ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। गुरु भक्ति योग जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवाय यह मार्ग कौन दिखा सकता है? गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट है। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता बताते हैं। कितने महान होने के बावजूद भी तमाम संतों ऋषियों पैगंबरों जगत गुरुओं अवतारों एवं महापुरुषों के अपने गुरु थे। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु के सानिध्य से सब संशय भय चिंता और दुख का नाश होता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु में दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भवसागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। आध्यात्मिक मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उसमें पतन की संभावना है। अतः ऐसे गुरु के पास जाएं जो इस मार्ग के जानकार हो। गुरु का चिंतन करने से सुख, भीतरी शक्ति, मन की शांति एवं आनंद प्राप्त होता है। गुरु चिंतन से, गुरु चर्चा से उनके दैवीय स्वभाव का संचार हमारे जीवन में होता है। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में सचमुच ही तारणहार है। कल हमने सुना श्री उड़िया बाबा जी के बारे में। वे बचपन में बड़े ही शांत स्वभाव के थे। चपलता तो उनमें नाम मात्र भी नहीं थी। जहां डाल दिए वहीं पड़े रहते और जहां बैठे रहे वहीं पर बहुत देर तक बैठे रहते। खेल कूद से उनको कोई मतलब नहीं था। अपने नेत्र मूंदे प्राय वही रहते थे। कोई उनको पीटता तो चुपचाप सहन करते हैं, उसके प्रतिकार का कोई भी प्रयत्न नहीं करते। आपकी इस मनोवृत्ति से सभी को बड़ा आश्चर्य होता था। एक बार वे एक ब्राह्मणी के लड़के के साथ अपने घर से चले गए और बालेश्वर होते हुए मयूरगंज पहुंचे। उस समय उनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। मयूरगंज की पाठशाला में उनके पिता के परिचित आचार्य थे, उन्होंने उन्हें भर्ती कर लिया। आपको भय था कि कहीं उनकी आने की सूचना घर वालों को न दे दें, जिससे उन्हें विद्याध्ययन में विघ्न उपस्थित हो जाए। इसलिए ही कुछ ही दिनों में वे वहां से बाल्य पीड़ा चले आए। यहां राजा कृष्णानंद के विद्यालय में वे भर्ती हो गए और अध्ययन करने लगे। 5 वर्ष तक यही रहकर आपने काव्य तीर्थ परीक्षा पास की। इस बीच में वे केवल एक बार घर गए। हाँ, पत्रादिक के द्वारा आप घर वालों को अपना समाचार देते रहते थे। जिस समय आप काव्य तीर्थ के अंतिम खंड में पढ़ रहे थे, तब ऐसी एक घटना हुई जिसके कारण आपके हृदय में निहित निमूढ़ भक्ति प्रेम का परिचय मिलता है। राजा कृष्णचंद्र एक निष्ठावान वैष्णव थे। उनके यहां भगवान श्री गोपीनाथ का एक मंदिर था। उसमें कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक उत्सव मनाया जाता था। इस समय वहां नाटक मंडलियां भी आती थी। इस वर्ष कलकत्ते की बाल संगीत नाम की एक प्रसिद्ध मंडली बुलाई गई। उसने ब्रह्मा द्वारा वत्सहरण नामक नाटक प्रस्तुत किया। नाटक में एक दृश्य आया कि व्रज की वनस्थली में सखाओं से घिरे हुए श्री नंद नंदन दोपहर का भोजन कर रहे हैं। गोवत्स इधर उधर चल रहे हैं। बाल गोपालों ने भगवान को चारों ओर से घेरा हुआ है। श्याम सुंदर उन्हें पत्तों पर भोजन परोस रहे हैं और बाल गोपाल एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं। इस अद्भुत लीला का लोक पितामह ब्रह्मा जी एक वृक्ष की ओट में छिपकर निहार रहे हैं। इस लीला में दृश्य का बालक आर्द्र त्राण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। ये वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए और उसी का चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते इनकी वृत्ति भाव समाधि में ऐसी तल्लीन हुई कि 3 दिन और 3 रात्रि तक इन्हें बाह्य जगत का भान ही न रहा। इनके चित्त पर केवल यही चित्र अंकित रहा। यह इनके जीवन में पहला भाव वेश था। साथी विद्यार्थी तो इस रहस्य को कुछ भी नहीं समझ सके। फिर इसी वर्ष एक और भी घटना घटित हुई। पाठशाला के गंगाधर मिश्र नाम के एक विद्यार्थी थे। वे आपको अपने छोटे भाई के समान समझते थे और सब प्रकार से आपकी देखभाल करते थे। कार्यवश वे मेदिनीपुर गए और वहां 4-5 घंटों में ही हैजे से उनका देहांत हो गया। इस दुर्घटना का भी आपके चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इससे आपको सारा संसार नाशवान और निरस प्रतीत होने लगा। अब आपको किसी का भी संसर्ग अच्छा नहीं लगता था और आप सबसे अलग उदासीन भाव से रहने लगे। यहीं से आपके जीवन में वैराग्य का आरंभ हुआ।